के अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और इंग्लैंड की स्थिति के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगस्त 1914 ईस्वी में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापक पैमाने पर शुरू हुए युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध या महाविश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। लगभग 4 वर्षों 1914 से लेकर 18 तक निरंतर चलने वाले इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के प्रायः सभी प्रमुख राष्ट्रों ने भाग लिया। ये राष्ट्र 2 गुटों में विभक्त थे। एक गुट मित्र राष्ट्रों के नाम से जाने जाते थे, जिसमें फ्रांस, रूस, अमेरिका, भारत आदि जैसे कई राष्ट्र शामिल थे, जबकि दूसरा गुट त्रिगुट कहा जाता था, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख शक्तियों के रूप में था और कई छोटे छोटे सहायक राष्ट्र भी उसमें उनको सहायता प्रदान कर रहे थे। अब हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि प्रथम विश्व में इंग्लैंड में सम्मिलित होने के कारण क्या थे, इंग्लैंड इसमें क्यों शामिल हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के शामिल होने का सर्वप्रथम कारण जर्मनी नौसेना की शक्ति में दिन दुगुनी राष्ट्रगुनी जो वो प्रगति कर रहा था, वो एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। उन दिनों इंग्लैंड की नाविक शक्ति संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। उनके साम्राज्य विस्तार की नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रक्षा के लिए आवश्यक था कि इंग्लैंड की नौसेना विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली बनी रहे। ग्रे का कहना है कि यदि इंग्लैंड की जल सेना जर्मनी से अधिक शक्तिशाली रहती है, तब भी जर्मनी के लिए विशेष खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जर्मनी की स्थल सेना अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण यदि इंग्लैंड अपनी स्थल सेना जर्मनी क्षेत्र में उतारता है तो भी वह जर्मनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यदि जर्मनी की जल सेना इंग्लैंड की सीमा पर उतार सकेगा और तब इंग्लैंड के लिए जर्मनी खतरा सिद्ध हो सकता है। अतः जर्मनी जल सेना की शक्ति में हो रहे अप्रत्याशित वृद्धि की आशंका से इंग्लैंड के राजनीतिक विचलित हो उठे और उन्होंने जर्मनी की इस नीति की तीखी आलोचना करनी शुरू कर दी। चर्चिल भी नौसेना की शक्ति को इंग्लैंड की सत्ता के लिए आवश्यक मानते हुए जर्मनी की नाविक शक्ति के विस्तार की भर्त्सना करते हुए कहा था कि हमारे अंग्रेजी जल सेना आवश्यक है और कुछ दृष्टि से जर्मनी की जल सेना इसके लिए विला समय आवश्यकता है। हमारी नौसेना की शक्ति से हमारी सत्ता संबंधित है। हमारे लिए नौसेना हमारी सत्ता है, किंतु उसके लिए प्रसार हेतु है। वस्तुतः अंग्रेजी जल सेना के कारण इंग्लैंड एक महान शक्ति था। जर्मनी के पास जब तक 1,000 भी सैनिक न थे, तब भी वह महान शक्ति था। जब संपूर्ण संसार उसका सम्मान करता था, जर्मनी की नौसेना में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि पर रोक लगाने के लिए इंग्लैंड की ओर से कई प्रयास किए गए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। अपनी विफलता के कारण इंग्लैंड भी भावी युद्ध की तैयारी में जुट गया। इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का दूसरा प्रमुख कारण है जर्मनी की शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि होना। उनकी बढ़ती हुई शक्ति पाश्चात्य यूरोपीय देशों, विशेषकर इंग्लैंड के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय था। उन दिनों जर्मनी में शक्ति की पूजा होती थी। इस आशय की पूर्ति सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक नीत्से भी ने किया है, अपने कथनों में किया है। तुम कहते हो कि अच्छा उद्देश्य युद्ध को पवित्र बना देता है। मैं कहता हूँ अच्छा युद्ध उद्देश्य को पवित्र बना देता है। पड़ोसी से प्रेम कहीं बढ़कर युद्ध और हिम्मत में महान सफलता प्राप्त की जा सकती है। निश्चय के इस तरह के विचार त्रिस्के ने भी व्यक्त किया। उनके अनुसार राज्य का सबसे महान नैतिक कर्तव्य अपनी शक्ति की परवाह करना है। सभी राजनीतिक कमजोरियों में निर्बलता सर्वाधिक घृणित है। यह राजनीति के पवित्र देवता के विरुद्ध पाप है। मिराबो ने भी तो यही कहा कि युद्ध प्रजा का राष्ट्रीय उद्योग है। अन्य कई इतिहासकारों ने भी इसी तरह के विचार प्रकट किए थे। इस तरह जर्मनी के दर्शन, विज्ञान और इतिहास सभी शक्ति की जय जयकार कर रहे थे। शक्ति संचयन ही जर्मनी का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि जर्मनी विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का प्रयास करता। अतः इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन राजनीतिज्ञ के प्रयास शंका की दृष्टि से देख रहे थे। यूरोप में किसी भी देश का शक्तिशाली होना इंग्लैंड के में एक खतरा का विषय था। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में 1914 में तक इंग्लैंड ने औपनिवेश क्षेत्र में जर्मनी को अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। दोनों देशों के बीच मध्य पूर्व और पुर्तगाल उपनिवेशों के संबंध में भी समझौता हो गया था, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के पोषक जर्मनी भला इतने में संतुष्ट नहीं थे। दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित था कि इंग्लैंड की सरकार ने अपने हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही जर्मनी की सुविधा प्रदान कर सकता था। इस तरह इंग्लैंड का जर्मनी के साथ संबंध बिगड़ने में दोनों देशों के औपनिवेशिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदता भी कार्य कर रही थी। तात्कालिक परिस्थिति में इंग्लैंड विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश था और उसने कभी पतन का मुख नहीं देखा था। अतः अपनी स्थिति को पूर्णतः बनाए रखने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। दूसरी ओर जर्मनी इसके लिए हर क्षेत्र में प्रतिद्वंदी बना हुआ था और वह इंग्लैंड का स्थान पाने के लिए अग्रसर था। इन कारणों से भी इंग्लैंड के लिए जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में रणभूमि में उतरना अनिवार्य हो चला था, ताकि मित्र राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति के साथ जर्मनी की शक्ति को कुचलकर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राष्ट्र का अरमान भी चूर चूर किया जा सके। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार प्रथम विश्व में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के समर्थन में मित्र राष्ट्र के गुट भी शामिल हो गए थे। जब फ्रांस और रूस रणभूमि में उतर पड़े तो अपने वायदे के मुताबिक इंग्लैंड के लिए भी युद्ध में शामिल होना अनिवार्य हो गया था। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार इंग्लैंड का प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के इस कारण का खंडन करते हैं। उनके मत में इंग्लैंड ने फ्रांस और रूस के साथ एकमात्र समझौता किया था। वास्तव में उसने किसी संघ का निर्माण नहीं किया था। समझौते में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं था कि युद्ध छिड़ने पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को सहायता करेगा। ग्रे निरंतर युद्ध रोकने का प्रयास करता रहा। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की सार्वेरिया और सराजेवो नगर में हत्या हो जाने के बाद भी जब फ्रांस ने इंग्लैंड से यह घोषणा करने को कहा कि जब जर्मनी युद्ध में शामिल होगा तो वह भी युद्ध की घोषणा करेगा, लेकिन ग्रे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अपनी युद्ध नीति का ही उसने अपना परिचय दिया। जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण किए जाने के साथ ही इंग्लैंड युद्ध में शामिल हो गया। यद्यपि युद्ध का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के साथ हुआ था, लेकिन शीघ्र ही संपूर्ण विश्व उसकी चपेट में आ गया, बिना नहीं रह सका।